एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही अहम और कह सकते हैं झकझोर देने वाली कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी है पैट्रिक रेडन कीफ की 2021 की किताब एम्पायर ऑफ पेन, द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द सैकलर डायनेस्टी की।
जी, ये किताब सैकलर परिवार के उत्थान और पतन की कहानी है, और सबसे जरूरी, अमेरिका में जो भयंकर ओपियोइड संकट आया उससे उनके गहरे और कहना पड़ेगा विनाशकारी जुड़ाव की कहानी है।
हाँ, मतलब ये सैकलर परिवार तीन भाई थे ना, आर्थर, मोर्टिमर और रेमंड।
बिल्कुल, ब्रुकलिन में यहूदी आप्रवासी माता पिता के बेटे, और ये मालिक थे पर्ड्यू फार्मा के, वही कंपनी जिसने ऑक्सीकॉन्टिन बनाई।
ऑक्सीकॉन्टिन एक ऐसी दवा जिसने कुछ लोगों का दर्द कम किया होगा पर लाखों लोगों की जिंदगी तबाह कर दी। यही इस कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास है शायद।
सही कहा, एक तरफ तो उन्होंने चिकित्सा में कुछ योगदान दिया, अरबों डॉलर कमाए, दुनिया भर के म्यूजियम्स और यूनिवर्सिटीज को दान दिया।
हाँ, वो नाम चमकाने वाली बात।
हाँ बिल्कुल, और दूसरी तरफ उनकी कंपनी की जो मार्केटिंग रणनीति थी, खासकर ऑक्सीकॉन्टिन को लेकर, उसने सीधे सीधे ओपियोइड महामारी को भड़काने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई, और ये अनजाने में नहीं हुआ।
ये बात चौंकाती है। तो ये कहानी सिर्फ पैसे और पावर की नहीं है?
नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। ये अमेरिकी सपने का वो स्याह पहलू है जहां महत्वाकांक्षा नैतिकता से टकराती है और अक्सर नैतिकता हार जाती है। ये दिखाती है कि कैसे धन और प्रभाव का इस्तेमाल सच को दबाने और जिम्मेदारी से बचने के लिए हो सकता है, और इसका असर आज भी दिखता है पब्लिक हेल्थ पॉलिसी में, कानूनों में।
तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। कहां से आए थे ये लोग, इनकी जड़ें कहां थी?
इनकी कहानी शुरू होती है, जैसा आपने कहा, ब्रुकलिन में। महामंदी का दौर था, माता पिता आइजैक और सोफी पूर्वी यूरोप से आए यहूदी आप्रवासी थे, बहुत गरीबी देखी उन्होंने।
और उस वक्त यहूदी विरोधी माहौल भी था अमेरिका में।
हाँ, वो भी एक फैक्टर रहा होगा। माहौल ऐसा था कि भाई पढ़ लिख कर ही गरीबी से निकला जा सकता है। तो तीनों भाइयों में, खासकर आर्थर में, जो सबसे बड़े और तेज थे, पढ़ने और आगे बढ़ने की जबरदस्त इच्छा थी। शायद वो आर्थिक असुरक्षा का डर हमेशा उन्हें प्रेरित करता रहा।
और इसलिए तीनों ने मेडिकल की पढ़ाई की। डॉक्टर बनना उस समय एक सुरक्षित रास्ता माना जाता होगा।
हाँ, सम्मानजनक भी और आर्थिक रूप से स्थिर भी। तो तीनों भाई डॉक्टर बने, लेकिन आर्थर वो सिर्फ डॉक्टर नहीं थे।
हाँ, आर्थर का जिक्र बार बार आता है, उनमें कुछ खास बात थी।
बिल्कुल, क्रीडमोर मनोरोग केंद्र में काम करते हुए उन्हें समझ आया कि सिर्फ दवा बनाना काफी नहीं है, उसे बेचना भी एक कला है, एक विज्ञान है। उन्हें मनोरोग दवाओं की जरूरत भी दिखी और दवा कंपनियों की ताकत भी।
और यहीं से उन्होंने वो क्रांतिकारी काम किया है ना, दवा विज्ञापन वाला।
हाँ, 1950s के दशक में ये सच में एक टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने एक छोटी एड एजेंसी विलियम डगलस मैक एडम्स खरीदी और उसे पूरी तरह मेडिकल एडवर्टाइजिंग पर फोकस कर दिया।
पर इसमें नया क्या था? विज्ञापन तो पहले भी होते होंगे।
नया था तरीका। आर्थर ने समझा कि डॉक्टरों को सिर्फ साइंटिफिक डेटा नहीं बेचना है, उन्हें मनोविज्ञान का इस्तेमाल करना होगा, भावनात्मक अपील करनी होगी। उन्होंने सीधे डॉक्टरों को टारगेट किया, जो उस समय अनसुना था।
भावनात्मक अपील डॉक्टरों के लिए, मतलब कैसे?
उन्होंने महसूस किया कि डॉक्टर भी इंसान हैं, वो मरीजों की मदद करना चाहते हैं, उन्हें आश्वासन चाहिए। तो आर्थर ने रॉश कंपनी की दवाएं थीं लिब्रियम और वैलियम, उनके लिए ऐसे विज्ञापन बनाए जो सीधे डॉक्टरों की भावनाओं को छूते थे।
वैलियम का तो बहुत नाम सुना है।
हाँ, आर्थर ने उसे सिर्फ गंभीर चिंता की दवा नहीं, बल्कि रोजमर्रा के तनाव, एवरीडे स्ट्रेस की दवा के तौर पर प्रमोट किया। ये दवाएं घर घर पहुंच गईं। रोश ने बेहिसाब पैसा कमाया और आर्थर ने भी।
गजब है, मतलब मनोविज्ञान का इस्तेमाल करके दवा को एक जरूरत से ज्यादा एक तरह की लाइफस्टाइल चीज बना देना।
बिल्कुल, और यही मॉडल, यही खाका बाद में ऑक्सीकॉन्टिन के लिए इस्तेमाल हुआ। इसी बीच 1952 में आर्थर के जो छोटे भाई थे, मोर्टिमर और रेमंड, उन्होंने एक छोटी दवा कंपनी खरीदी, पर्ड्यू फ्रेडरिक।
अच्छा, तो ये पर्ड्यू फार्मा की शुरुआत थी।
हाँ, बाद में यही पर्ड्यू फार्मा बनी। शुरुआत में छोटे मोटे प्रोडक्ट्स बनाते थे, जैसे बीटाडीन एंटीसेप्टिक, वो काफी चला।
लेकिन फिर ओपियोइड्स की तरफ कैसे गए?
असली मोड़ आया 80 के दशक में एमएस कॉन्टिनेंट के साथ। ये धीमी गति से रिलीज होने वाली मॉर्फीन थी, कैंसर के भयानक दर्द के लिए। ये एक जरूरी दवा थी और इसने कंपनी को कॉन्टिनेंट टाइम रिलीज सिस्टम दिया जो उनका ट्रेडमार्क बन गया।
लेकिन फिर पेटेंट खत्म होने का डर सताने लगा होगा।
एग्जैक्टली, एमएस कॉन्टिन से अरबों आ रहे थे, पर पेटेंट एक्सपायरी मतलब कमाई खत्म। कंपनी को एक नई ब्लॉकबस्टर दवा चाहिए थी और इस समय तक रेमंड के बेटे रिचर्ड सैकलर कंपनी में बहुत प्रभावशाली हो चुके थे।
रिचर्ड सैकलर, किताब में उन्हें काफी आक्रामक दिखाया गया है।
हाँ, बेहद जुनूनी, मुनाफे के लिए कुछ भी करने को तैयार। और उनकी नजर पड़ी ऑक्सीकोडोन पर।
ऑक्सीकोडोन, ये तो पुरानी दवा है और बहुत नशीली मानी जाती है।
बिल्कुल, सस्ती, पुरानी, शक्तिशाली और हाईली एडिक्टिव। आइडिया ये था कि इसे पर्ड्यू के कॉन्टेंट सिस्टम में डाल दो और दावा ये करो कि क्योंकि ये धीरे धीरे रिलीज होगी तो इसकी लत लगने का खतरा बहुत कम है।
और इसी दावे पर ऑक्सीकॉन्टिन को 1996 में लॉन्च किया गया।
हाँ, और यहीं से वो तबाही शुरू हुई जिसका असर आज तक महसूस होता है।
इसका जो मार्केटिंग अभियान था वो तो मतलब सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला था।
शायद अमेरिकी इतिहास का सबसे झूठा और सबसे आक्रामक दवा मार्केटिंग अभियान। और इसकी नी भी एक झूठ पर थी,
वो 1% से कम लत वाला दावा।
हाँ, ये दावा एक मेडिकल जर्नल में छपे एक पुराने लेटर टू दी एडिटर को तोड़ मरोड़कर पेश करने पर आधारित था। दशकों की मेडिकल रिसर्च कहती थी कि ऑक्सीकोडोन जैसे ओपियोइड्स बहुत एडिक्टिव होते हैं, लेकिन पर्ड्यू ने डॉक्टरों को यकीन दिला दिया कि ऑक्सीकॉन्टिन अलग है, ये सुरक्षित है।
और डॉक्टरों ने मान लिया?
हैरानी की बात है। हाँ, संदेश बहुत सिंपल और आकर्षक था। पीठ दर्द, गठिया, कोई बात नहीं, ऑक्सीकॉन्टिन लिखो, डरने की जरूरत नहीं। पर्ड्यू ने डॉक्टरों की एक पूरी पीढ़ी को री एजुकेट कर दिया, कह सकते हैं।
लेकिन सिर्फ कहने से तो काम नहीं चलता, उन्होंने और क्या किया? एफडीए का भी जिक्र आता है।
हाँ, ये बहुत गंभीर मामला है। एफडीए के एक परीक्षक थे डॉक्टर कर्टिस राइट। उन्होंने ऑक्सीकॉन्टिन के उस भ्रामक लेबल को मंजूरी दी जिसमें लत का खतरा कम बताया गया था।
और फिर
मंजूरी देने के कुछ ही समय बाद डॉक्टर राइट एफडीए छोड़कर पर्ड्यू फार्मा में एक ऊंचे पद पर बहुत मोटी सैलरी पर चले गए। ये रिवॉल्विंग डोर का क्लासिक केस है। रेगुलेटर ही रेगुलेटेड कंपनी में चला गया।
ये तो सीधे सीधे हितों का टकराव है।
बिल्कुल, और इसके बाद तो पर्ड्यू ने मार्केटिंग पर जैसे हमला ही बोल दिया। सेल्स फोर्स दोगुनी कर दी, 600 से ज्यादा लोग, और उन्हें बोनस मिलता था सीधे सीधे इस बात पर कि उनके डॉक्टर कितनी ऑक्सीकॉन्टिलिन लिख रहे हैं।
मतलब जितना ज्यादा प्रिस्क्रिप्शन उतना ज्यादा बोनस।
हाँ, सोचिए क्या इंसेंटिव था। और टारगेट कौन थे? बड़े स्पेशलिस्ट नहीं।
नहीं तो कौन?
आम डॉक्टर, जनरल प्रैक्टिशनर, खासकर ग्रामीण इलाकों में जैसे अपलाचिया, जहां दर्द की समस्याएं ज्यादा थीं और डॉक्टरों के पास स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग कम थी। उन्होंने उन डॉक्टरों को ढूंढा जो पहले से ज्यादा ओपियोइड लिखते थे और उन पर फोकस किया।
और तरीके क्या थे?
हजारों दर्द प्रबंधन सेमिनार करवाए, अच्छी अच्छी जगहों पर डॉक्टरों को मुफ्त खाना पीना, घूमना और साथ में ऑक्सीकॉन्टिन का गुणदान। मेडिकल जर्नल्स में स्पॉन्सर्ड लेख छपवाए, दर्द पांचवा वाइटल साइन है, इस विचार को खूब हवा दी।
मतलब दर्द का इलाज जरूरी है और ऑक्सीकॉन्टिन सबसे अच्छा तरीका है।
एग्जैक्टली, उन्होंने डॉक्टरों को गिफ्ट्स दिए, मछली पकड़ने की टोपी से लेकर म्यूजिक सीडी तक, सब पर ऑक्सीकॉन्टिन का ब्रांड।
नतीजा क्या हुआ? बिक्री तो बढ़ी होगी।
बिक्री वो तो रॉकेट की तरह बढ़ी। पहले साल $48 मिलियन से कुछ ही सालों में $1 बिलियन सालाना से भी ज्यादा। पर्ड्यू और सैकलर परिवार माला माल हो गए।
लेकिन
इसके साथ ही ऑक्सीकॉन्टिन की लत, उससे जुड़े अपराध और ओवरडोज मौतें भी रॉकेट की तरह बढ़ने लगी।
एक तरफ पैसा बरस रहा था, दूसरी तरफ जाने जा रही थी।
हाँ, और एक और बात, पर्ड्यू को बहुत जल्दी पता चल गया था कि लोग गोलियों को क्रश करके या घोलकर इंजेक्शन से ले रहे हैं, जिससे हेरोइन जैसा असर होता है। मतलब वो टाइम रिलीज वाला दावा तो बेकार हो गया। आंतरिक दस्तावेज दिखाते हैं कि उन्हें ये पता था,
लेकिन उन्होंने इसे छुपाया।
हाँ, छुपाया और दवा बेचते रहे।
ओह, पर कानून, मुकदमे, कुछ तो हुआ होगा।
हुआ, पर देर से और कह सकते हैं नाकाफी। 2000 के दशक में मुकदमे शुरू हुए। 2007 में एक बड़ा समझौता हुआ। पर्ड्यू ने $634 मिलियन जुर्माना भरा और तीन अधिकारियों ने, जो सैकलर नहीं थे, मिस ब्रांडिंग का दोष माना।
लेकिन किसी सैकलर पर आपराधिक आरोप नहीं लगा?
नहीं, किसी पर नहीं। और परिवार का रवैया पूरी तरह इनकार का। रिचर्ड सैकलर की ईमेल बाद में सामने आए जिसमें वो पीड़ितों को कचरा और अपराधी कह रहे थे।
ये तो बहुत असंवेदनशील है।
बेहद। उनका मानना था कि दवा अच्छी है, लोग खुद इसके आदि हो रहे हैं।
और इसी बीच वो अपनी छवि चमकाने में लगे थे दान वगैरह देकर।
हाँ, वो रेप्यूटेशन लॉन्ड्रिंग। जैसे जैसे ऑक्सीकॉन्टिन की बदनामी बढ़ी, उन्होंने दुनिया के बड़े बड़े म्यूजियम, यूनिवर्सिटीज, मेट, लूव, टेट, हार्वर्ड, येल, सबको अरबों डॉलर दान दिए ताकि उनका नाम दवा से नहीं, कला और संस्कृति से जुड़े।
लेकिन ये चला नहीं आखिर में।
नहीं, और इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है कलाकार नैन गोल्डन को। वो खुद ऑक्सीकॉन्टिन की लत से जूझी थीं। उन्होंने PAIN नाम का ग्रुप बनाया और उन सब संस्थानों के बाहर जोरदार प्रदर्शन किए जिन्होंने सैकलर का पैसा लिया था।
डाइन्स वगैरह।
हाँ, उन्होंने संस्थानों पर भारी दबाव बनाया कि वो सैकलर का पैसा लौटाएं और उनका नाम हटाएं।
और असर हुआ इसका?
जबरदस्त। एक के बाद एक संस्थानों ने सैकलर से दूरी बना ली, नाम हटा दिए। ये परिवार के लिए बहुत बड़ा झटका था। और अंत में हजारों मुकदमों के बोझ तले पर्ड्यू फार्मा ने 2019 में दिवालियापन घोषित कर दिया।
कंपनी खत्म, नाम बदनाम, लेकिन पैसा, क्या परिवार का पैसा भी गया?
यहीं पर कड़वी सच्चाई है। कंपनी भले ही दिवालिया हो गई, लेकिन परिवार अपने अरबों डॉलर की निजी संपत्ति का बड़ा हिस्सा बचाने में कामयाब रहा, लीगल सेटलमेंट्स के जरिए।
ये कहानी सिर्फ लालच की नहीं लगती, ऐसा लगता है उनके अंदर एक खास सोच काम कर रही थी। वो खुद को कैसे देखते थे, विलेन या हीरो?
ये दिलचस्प सवाल है। किताब के मुताबिक वे खुद को, खासकर आर्थर और रिचर्ड, हीरो ही मानते थे, चिकित्सा में क्रांति लाने वाले। उनका मानना था कि सफलता के लिए सिर्फ मेहनत काफी नहीं, आपको मार्केटिंग आनी चाहिए, आपको लोगों की सोच को बदलना आना चाहिए।
आर्थर के मनोविज्ञान की समझ इसमें काम आई होगी।
बिल्कुल, वो डॉक्टरों, मरीजों, रेगुलेटरों सबकी साइकोलॉजी समझते थे। वो जानते थे कि एक अच्छी कहानी गढ़ना दवा बनाने जितना ही जरूरी है, और उन्हें शायद सच में लगता था कि वो दर्द कम करके मानवता की भलाई कर रहे हैं।
और इसी सोच ने उन्हें गलत कामों को सही ठहराने में मदद की।
शायद किताब यही इशारा करती है, शुरुआत में मकसद शायद आर्थिक सुरक्षा था, पर बाद में सामाजिक सम्मान, प्रभाव, मान्यता की भूख बढ़ती गई, और जब भी उन पर सवाल उठे, उनका रवैया हमेशा बचाव का, इनकार का और दोष दूसरों पर डालने का रहा।
और अगर हम इस पूरी कहानी के तीन सबसे बड़े मोड़ देखें तो वो क्या होंगे? पहला
तो निश्चित रूप से आर्थर का 1950 के दशक में मेडिकल एडवर्टाइजिंग को बदलना।
हाँ, वो मनोविज्ञान का इस्तेमाल। उसने न सिर्फ इंडस्ट्री बदली, बल्कि ये दिखाया कि मार्केटिंग से कितना पैसा बन सकता है। ऑक्सीकॉन्टिन का रास्ता यहीं से खुला।
सही। दूसरा मोड़ था 1952 में पर्ड्यू का अधिग्रहण और फिर MS कॉन्टिन के साथ उसका विकास। इसने उन्हें वो प्लेटफॉर्म दिया जहां वो मार्केटिंग की रणनीतियां लागू कर सकते थे, और ऑक्सीकॉन्टिन जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा और अनुभव भी मिला।
और तीसरा, सबसे अहम और विनाशकारी,
वो था 1996 में ऑक्सीकॉन्टिन का लॉन्च और उसके बाद शुरू हुई कानूनी जंग। ये उनकी सफलता का चरम भी था और उनके पतन की शुरुआत भी। इसी ने ओपियोइड महामारी को हवा दी।
और कानूनी लड़ाइयों ने उनकी छवि हमेशा के लिए बदल दी। हीरो से विलेन, 2007 का समझौता जिसमें वो बच निकले, उसने उनके इनकार वाले पैटर्न को और पक्का कर दिया।
बिल्कुल, ये तीन मोड़ दिखाते हैं कि कैसे अच्छी शुरुआत भी लालच और नैतिक गिरावट की तरफ जा सकती है।
इस सब से हम क्या सीख सकते हैं? आज के जमाने के लिए क्या सबक है?
सबसे पहला सबक तो यही है कि नेक इरादे भी जब बेलगाम मुनाफे की हवस से मिलते हैं तो कितने खतरनाक हो सकते हैं। महत्वाकांक्षा जरूरी है, पर नैतिक कंपास के बिना वो विनाशकारी हो सकती है।
और वो खुद को सही ठहराने वाली बात, रैशनलाइजेशन।
हाँ, वो बहुत खतरनाक है। सैकलर परिवार ने हमेशा अपने अच्छे कामों, दान वगैरह पर फोकस किया और बुरे नतीजों को नजरअंदाज किया। वो अपनी कहानी में खो गए। ये हमें सिखाता है कि खुद की और दूसरों की आलोचना सुनने की हिम्मत होनी चाहिए, वरना हम कब गलत रास्ते पर निकल जाए पता नहीं चलता।
दान पुण्य करके गलत काम छिप नहीं सकते, ये भी एक सबक है।
बिल्कुल, अरबों डॉलर का दान भी ओपियोइड संकट के सच को नहीं छिपा सका। नैतिक जिम्मेदारी का कोई शॉर्टकट नहीं होता।
और क्या ये सिर्फ सैक्सलर की गलती थी या सिस्टम भी जिम्मेदार था?
ये समझना बहुत जरूरी है कि ये एक सिस्टेमिक फेलियर था। सिर्फ एक परिवार का लालच नहीं, दवा कंपनियों की मार्केटिंग, डॉक्टरों का आसानी से लिखना, रेगुलेटर्स की नाकामी, दर्द को लेकर समाज की सोच, हेल्थ केयर सिस्टम की कमियों, सबने मिलकर इस संकट को बढ़ाया। ये दिखाता है कि कैसे पावरफुल लोग सिस्टम की कमियों का फायदा उठाते हैं।
मतलब हमें सिर्फ लोगों पर नहीं, सिस्टम पर भी सवाल उठाने होंगे।
हाँ, और एक और बात, शॉर्ट टर्म फायदे के लिए लॉन्ग टर्म नतीजों को नजरअंदाज करना। पर्ड्यू ने फौरन मुनाफा देखा, दूरगामी असर नहीं। नतीजा, एक भयानक महामारी और खुद का पतन।
ये सबक आज के प्रोफेशनल वर्ल्ड के लिए बहुत जरूरी लगते हैं।
बेहद, ये हमें नैतिक साहस की याद दिलाते हैं। दबाव में भी सही गलत को समझना, सवाल पूछना और जब लगे कि कुछ गलत हो रहा है तो आवाज उठाना। सफलता और पैसा हमारी नैतिकता को धुंधला कर सकते हैं। हमें अपने काम के असर के प्रति सचेत रहना होगा।
इस पूरी बातचीत के आखिर में अगर 3 खास बातें निकालनी हो, पहली कोई भावनात्मक अंतर्दृष्टि।
मेरे लिए सबसे भावनात्मक बात ये त्रासदी है कि कैसे दर्द कम करने का नेक इरादा मुनाफे की हवस में बदला और लाखों जिंदगियां तबाह हुईं। ये दिखाता है कि सफलता और पैसा कैसे हमारे नैतिक बोध को कमजोर कर सकते हैं। ये दुखद है।
और एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि, सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान।
बौद्धिक रूप से सबसे बड़ा सबक ये है कि ओपियोइड संकट सिर्फ एक कंपनी की गलती नहीं बल्कि एक जटिल प्रणालीगत विफलता थी। रेगुलेटरी, कानूनी, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक कई सिस्टम्स इसे रोकने में नाकाम रहे। ये दिखाता है कि पावरफुल लोग कैसे जवाबदेही से बच सकते हैं।
और अंत में एक सार्वभौमिक सबक जो हम सब पर लागू हो।
सबसे व्यावहारिक सबक है नैतिक साहस का महत्व, खासकर प्रोफेशनल लाइफ में। दबाव में भी सच के साथ खड़े रहना, मुश्किल सवाल पूछना और जब पेशेवर काम नैतिकता से टकराए तो आवाज उठाना। चुप रहना भी कई बार गलत में भागीदार बना देता है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।